आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण को लेकर की सिंचाई विभाग की बैठक। कहा, नलकूपों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनाई जाए वैज्ञानिक पद्धति। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा, एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप निर्माण को बनाए जन आंदोलन। दो राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने का जारी किया परामर्श। और प्रदेश के कई जनपदों में कल से रूक रूक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में टूटा पिछले 125 वर्ष का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्यम से तेज बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाढ़ सागर और मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नलकूपों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से कोई समझौता न किया जाए। मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा के रिजर्व वायर को डीसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर जन आंदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराएं। उन्होंने कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप वर्षा जल को रोककर धीरे धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। ये केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा जल संचयन और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ये कदम निर्णायक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में तालाबों, ब्लास्ट कूपों और चेक डैमों की फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन कराएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न दी जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक डॉक्टर की सलाह तथा कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए। 26 सितंबर को बरेली शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 83 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि तौकीर रजा का मीडिया और संचार विभाग संभाल रहे मुनीर इदरीसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालात को देखते हुए बरेली और आसपास के जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। बरेली में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया है। वहीं पुलिस ने आज सुरक्षा के मद्देनजर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा प्रतिनिधिमंडल को बरेली दौरे की अनुमति नहीं दी। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि बरेली में अब पूरी तरह अमन और चैन है। पुलिस ने जिस तरह से समय पर कार्रवाई की उसने उपद्रव फैलाने की हर साजिश को विफल कर दिया। प्रदेश में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत 11 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत आज प्रदेश के सभी जनपदों में पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम बालिकाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस से जुड़ी जानकारी हर बेटी के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी शिक्षा। पेश है एक रिपोर्ट।
पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान राज्य में जनपद, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्यशालाएं और सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बालिकाओं और महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़े अधिकारों, उपायों और कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम का संचालन विषय विशेषज्ञों, समाज सेवियों और प्रशिक्षकों की उपस्थिति में हुआ। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जनपद जौनपुर के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने आज जौनपुर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी कर सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती पर चर्चा कर रहे हैं।
रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों, वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा जीएसटी कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होगी। इस कदम से देश की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए जीएसटी सुधारों के तहत ये युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी की आवाजाही सस्ती होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आज सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश पर राज्य भर में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जनपदों में कल से ही रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड पानी बरसा है। वाराणसी जिले में पिछले 125 वर्षों में अक्टूबर महीने में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट।
वाराणसी में पिछले 2 दिन का मौसम सावन पर भी भारी पड़ गया। बृहस्पतिवार की रात से शुक्रवार रात तक करीब 24 घंटे में 140.8 मिलीमीटर बारिश ने अगस्त की याद दिला दी। सड़कें तालाब हो गईं और गंगा के घाट झरने की तरह नजर आए। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 125 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले वर्ष 1900 में 138.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं इस साल सावन के किसी भी एक दिन में शुक्रवार जितनी बारिश नहीं हुई थी, जबकि अक्टूबर में पहली बार इतनी बारिश हुई। बीएचयू स्थित मौसम स्टेशन में 9 अक्टूबर 1900 को एक दिन में 138.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
चंदौली में भारी बारिश के कारण मुगलसराय चकिया सड़क मार्ग बाधित हो गया है। कुशीनगर में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते धान, गन्ने और केले की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कानपुर देहात जिले में भी खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। देवरिया में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा आज कर दी गई। टीम में उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव, रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल को स्थान मिला है। ध्रुव जुरेल को एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिंकू सिंह T20 टीम के सदस्य हैं। वहीं कुलदीप यादव को दोनों टीमों में स्थान मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण को लेकर की सिंचाई विभाग की बैठक। कहा, नलकूपों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनाई जाए वैज्ञानिक पद्धति। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा, एक पेड़ माँ के नाम की तर्ज पर चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप निर्माण को बनाए जन आंदोलन। दो राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न देने का जारी किया परामर्श। और प्रदेश के कई जनपदों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। वाराणसी में टूटा पिछले 125 वर्ष का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्यम से तेज बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।